परम पूज्य महंत श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए 18 पुराण के सार संक्षेप कथन प्रक्रम में ब्रह्म पुराण के पश्चात दूसरा पुराण पद्म पुराण आता है। पद्म पुराण 18 पुराणों में से यदि दीर्घता के दृष्टिकोण से देखें, स्थूलता के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरा क्रम रखता है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है जिसमें 81,000 श्लोक है, तो पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है। और इन 55,000 श्लोकों में 5 खंडों का वर्णन है जिसमें सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड, ऐसे 5 खंडों में विभक्त यह 55,000 श्लोकों वाला आकृति के दृष्टिकोण से दूसरा महापुराण है जो 18 पुराणों के अंतर्गत आता है। हाँ, स्कंद के बाद इसका दूसरा क्रम आता है। इसका नाम पद्म रखा है। जिस प्रकार से सात्विक पुराणों में ब्रह्म पुराण आता है, उसी तरह से यह भी सात्विक पुराणों के अंतर्गत ही आता है। आदि के 6 पुराण लगभग सात्विक ही हैं। सात्विक पुराणों में विष्णु के महिमा का गुणगान किया गया है, क्योंकि विष्णु पालन शक्ति है, संहार करने वाला और सृजन करने वाले से पालन करने वाला अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वह सत्वगुणी होता है, पालन वही कर सकता है, रजोगुणी उत्पन्न कर सकता है, तमोगुणी व्यक्ति संहार करता है, लेकिन संभार में भी कोई न कोई उत्पत्ति और पालन की संभावनाएं होती है। बतलाया कि वही भगवान विष्णु उत्पत्ति काल में रक्त वर्ण से ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर लेते हैं और सृष्टि करते हैं, पालन काल में श्वेत वर्ण हो जाते हैं, निर्मल निराकार निर्मल होकर के सृष्टि का पालन करते हैं, और जब उस सृष्टि से उग जाते हैं, सृष्टि का काल पूरा हो जाता है, तो तमस स्वरूप में शिव स्वरूप धारण करके संहार करते हैं। देवता तो एक ही है, काम उनके 3-3 है। जैसे एक व्यक्ति में नाना प्रकार के संबंधों का निर्वाह होता है, क्रिया भेद से नाम भेद देखे जाते हैं, उसी तरह से देवता एक ही है लेकिन कार्य भेद से उनमें भेद दिखाई देता है। इसलिए हमें अभेद बुद्धि ही भगवान में रखनी चाहिए, भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। वही भगवान विष्णु गणेश रूप में अवतरित होते हैं, वही भगवान शिव रूप में होते हैं, वही उन्हीं की शक्ति कार्तिकेय रूप में है, वही देवी रूप में है, क्योंकि शक्ति का शक्तिमान से कोई अलग स्वरूप नहीं है। यदि हम में जो शक्ति है पूछा जाए कि यह किसकी शक्ति है, तो हम कहेंगे हमारी शक्ति है। तो आपकी शक्ति आई कहां से? मतलब जो शक्ति का स्वरूप है वो शक्तिमान से अलग नहीं है, तो जो देवी का स्वरूप है वो देवताओं से अलग नहीं है। इस प्रकार से पद्म पुराण ने सभी देवताओं और देवियों को एकाकार रूप प्रदान करते हुए, जिस प्रकार से पद्म मतलब कमल होता है, एक कमल पर्व में एक कमल के नाल में कितनी पंखुड़ियां लगी होती है और सब उससे जुड़ी होती है, उसकी सत्ता उससे अलग नहीं होती है, उसी तरह भगवान विष्णु के साथ सारे देवता जुड़े हुए हैं, कोई उससे भेदमय नहीं है। इसलिए इस पुराण का नाम पद्म पुराण रखा। सारे विषयों को बतलाते हुए भी यह विषयों से अलिप्त है, मतलब विषयों के साथ इसका वासना नहीं है। विषय उसे कहते हैं जिसमें हम जाकर के बंध जाते हैं, उसे विषय कहते हैं। बी उपसर्ग पूर्वक सिंह बंधने धातु से विषय बनता है, जहां हमारा मन जाकर के बंध जाए वह विषय है। राग लोभ ये सब क्या है? विषय। तो इन सब विषयों से संपृक्त होते हुए भी वह विनिर्मुक्त है। सत्वगुण के महिमा का अतिशय वहां वर्णन है। सत्वगुण प्रधान पुराण है, इसलिए इस पुराण का नाम पद्म पुराण रखा गया है। यह पद्म है, पद्म से ही, कमल से ही भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और वह पद्म आप देखें श्री हरि के नाभि कमल से उत्पन्न होता है। तो विष्णु की शक्ति ही ब्रह्मा जी में आती है, और ब्रह्मा की भी एक आयु काल है। ब्रह्मा जी कितने दिन तक चलेंगे और क्या क्या करेंगे, उनकी सृष्टि कैसे होती है, वह इन पुराणों के वर्ण विषय के क्रम में अभी आने वाला है। इसलिए कथाएं विविध प्रकार की है। ब्रह्म पुराण के अपेक्षा यह पुराण चौगुना बड़ा है। उसमें 10,000 से 13,000 के पास श्लोक संख्या है, इस पुराण के पास 55,000 श्लोकों की संख्याएं हैं। इसलिए यह उसके अपेक्षा दीर्घ आकृति प्रदान करेगा। इसमें बहुत सारी कथाएं हमको रोचक मिलेंगी, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो प्रथम खंड इसका सृष्टि खंड है, क्योंकि संरचना सबसे पहले होती है। यदि कोई रचना नहीं होगी तो फिर उसका पालन कैसे होगा, इसलिए सृष्टि खंड प्रथम खंड है। इसको सर्ग खंड भी कहते हैं। सर्ग मतलब सृष्टि। इसका मंगलाचरण भगवान वेदव्यास जी करते हैं। स्वच्छं चंद्रावदातं करिकरमरकार शोभसं जातफेनं ब्रह्मोद्भूति प्रसक्तै व्रतनियम परै सेवितं विप्रमुख्यै ओंकारालंकृतेन त्रिभुवन गुरुणा ब्रह्मणा दृष्टिपूतं संभोगाभोगरम्यं जलमशुभकरं पौष्करं नः पुनातु। पुष्कर तीर्थ के जल की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो पुष्कर तीर्थ है उसका जो जल है वह परम पवित्र है, वह हमारा कल्याण करे, वह हमें पवित्र करे। कहा वह कैसा है, स्थान बतला रहे हैं। तो चंद्रमा के समान उज्जवल है और स्वच्छ है, और हाथी के सूंड के आकार वाले नाकों के इधर उधर वेग पूर्वक फिरने से जो फेन पैदा होता रहता है, ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा और वार्ता में लगे हुए नियम व्रत पारायण श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका सदा सेवन करते हैं, ऐसी वह जलराशि है। ओंकार जप से विभूषित त्रिभुवन को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने अपने दृष्टि से पुष्कर के जल को पवित्र किया है, और जो पीने में स्वादिष्ट है और अपनी विशालता के कारण रमणीय है, नेत्रों को सुंदर दिखाई देता है। जल यदि सुंदर हो तो आप देखिए उसमें चंद्रमा की किरणें जब पड़ती है तो लगता है कि क्या अमृत है। जल लहरता है तो उसकी जो छटा है वह अद्भुत होती है। ऐसा जो पाप का हरण करने वाला पुष्कर तीर्थ का जल है वह हमें पवित्र करे। जैसा कि जल की आराधना कर रहे हैं, जल तत्व की आराधना कर रहे हैं। इसके पहले हम पुराण में वर्णन कराए हैं कि जल तत्व ही विष्णु तत्व है, और उस जल तत्व का जब तक स्मरण नहीं करेंगे किसी प्रकार की सृष्टि नहीं होगी। इसलिए जल तत्व जो है आराध्य है, क्योंकि जल में ही पद्म खिलता है। यदि जल न रहे तो पद्म कहाँ खिलेगा, कमल कहाँ खिलेगा। कस्य जलस्य मलम इति कमलम, जो जल के मल के रूप में उत्पन्न हो वह कमल है, और वह पुष्कर में उत्पन्न होता है वह। इसलिए इस पुराण का नाम पद्म पुराण रखा गया है। तो कहा कि पुष्कर तीर्थ है, फिर कहा कि पुष्कर के बाद फिर बता रहे हैं, इस कथा का उपक्रम करते हैं कि व्यास जी के शिष्य जो लोमहर्षण जी हैं, लोमहर्षण जी अपने पुत्र से कहते हैं, इनके पुत्र का नाम उग्रश्रवा है, कि हे मेरे पुत्र, पिता का दायित्व पूरा करना पुत्र की जवाबदारी होती है, इसलिए मेरे द्वारा जो तुमने कथा सुनी है इस कथा का प्रचार और प्रसार करो लोक हित की कामना से। आप आगे जाओगे तो आपको ऋषि मुनि मिलेंगे प्रयाग में, और वो आपसे प्रश्न करेंगे, इसलिए आप उनके प्रश्नों का उत्तर देना। हमने आपको संक्षेप में सुनाया है, लेकिन आपसे कोई पूछे तो आपको विस्तार पूर्वक उत्तर देना होगा, तो इसलिए आप चिंतन मनन करते रहो। वक्ता श्रोता दोनों का चिंतन मनन होते रहना चाहिए। जो सुने उसको इस कान से सुन करके इस कान से निकालना नहीं चाहिए, अथवा उसमें कुछ ऐसा लगे कि यह हमारे समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा पूछ लेना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। श्रोता की तीन क्वालिटी बताई है, श्रोता, सरोता और सोता। एक श्रोता होता है जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, एक सरोता होता है जो कथा को काटता है कि अरे ये क्या बोल दिया इन्होंने, ये गड़बड़ बोला, ये गड़बड़ बोला। और एक होता है सोता, वो सुनते हुए सोते रहता है। तो सोता, सरोता और श्रोता, ये तीन श्रेणी है। तो सोने का मतलब सुनने से है, सोना मतलब कथा में शयन सुनना है, ये नहीं कि कथा के विषय में नहीं सो जाना है, कथा के विषयों को ध्यान में रखना है और उसे अपने आप में उतारने की चेष्टा करनी है, क्योंकि श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य मंतव्य चोपपत्ति भी, श्रवण करना चाहिए और उपपत्ति प्रमाणों के द्वारा, तर्कों के द्वारा विचार करना चाहिए कि यह बात सही हो सकती है कि नहीं, और फिर उसे व्यवहार में ले आना चाहिए। श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य। तो इसलिए श्रवण, मनन और क्रिया में गोचरता, वह तीनों ही उसमें होना चाहिए। एक आदमी ने कहा भाई ब्रह्म है, तो कहा कि हाँ है, क्या प्रमाण है, कहा कि ब्रह्म सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। कहा सत है यह कैसे जानते हो, कहा कि हम नहीं मानते हैं इस बात को कि वह सत है। कहा तुम हो, ऐसा तुम मानते हो, हाँ, तो कहा कि हाँ मैं हूँ, तो तुम हो ऐसा सत्ता तुमको पता चलता है, हाँ, और तो तुमको यह ज्ञान भी है कि तुम हो, तो यह चित स्वरूप हो गया, और तुम प्रसन्न होते हो, कहा कि हाँ, तो ये आनंद स्वरूप हो गया। तो जैसे तुम अपने विषय में सत, चित और आनंद स्वरूप हो, उसी तरह से जो ब्रह्म है सबको समेटे हुए है, वह सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, वह परमात्मा है। यदि आप अपने आप को मानते हो तो आपको परमात्मा को भी मानना पड़ेगा। तो रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा जी जब प्रयाग प्राप्त करते हैं तो मुनिवर जो हैं वहां पर यज्ञ करने की इच्छा से इकट्ठा हुए, क्योंकि सभी कर्मों में श्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, ऐसा कात्यायन श्रौत सूत्र कहता है, क्योंकि यज्ञ से किसी का नुकसान नहीं होता है, यज्ञ विश्व का नाभि है। तो ऋषियों ने पूछा कि आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेद व्यास जी ने आपके पिता को पढ़ाया और आपके पिता ने पढ़ा करके आपको तैयार किया है, इसलिए आप हमें यह बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ यज्ञ करने का फल पूर्णतया प्राप्त हो और विघ्नों की प्राप्ति न हो, क्योंकि हम कार्य करें और बाधाएं आए, यज्ञ में राक्षस आते हैं, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, पुण्य कार्य में बहुत सारे विघ्न आते हैं, लेकिन उन विघ्नों को पार करने के लिए हमें संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति की जरूरत होती है। क्योंकि कहा कि प्रथम जो लोग होते हैं वह विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं कि अरे विघ्न आ जाएगा, दूसरे जो होते हैं विघ्न आने पर छोड़ देते हैं, और जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वह विघ्न चाहे जितना आए कार्य को अंतिम रूप देकर के ही रहते हैं। तो उत्तम लोग अपने कार्य के समापन तक अड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं, डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो, प्यारे तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो अपने कार्य के लिए हमेशा व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए और कार्य के समापन तक अपनी सारी शक्ति लगा देना चाहिए। हाँ, उसमें थोड़ा कभी ऐसा लगे कि विघ्न है तो थोड़ा रुक जाना चाहिए और फिर प्रारंभ कर देना चाहिए, लेकिन उसे अंतिम रूप तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि तो जब हवा की तेज झोंके चलती हो उस समय में बुद्धिमान पुरुष थोड़े देर रुक जाता है, जब हवा का वेग चला जाता है पुनः यात्रा प्रारंभ करता है। तो इसलिए वो ऋषि लोग विघ्न के भय से कहे कि हमको उत्तम एक स्थल बता दीजिए, क्योंकि स्थल यदि उत्तम होगा तो वहां विघ्न नहीं आएगा। उग्र श्रवाजी ने कहा, महाराज ये सामने आपके चक्र दिखाई दे रहा है, यह चक्र के पीछे पीछे आप जाएं, जहां यह चक्र जाकर के रुक जाए आप समझ लेना कि यही यज्ञ का उत्तम स्थान है। अब ऋषि लोग चक्र के पीछे पीछे, वह चक्र धर्म चक्र था, विष्णु का चक्र था, उसके पीछे पीछे जाए चलना चालू किया। वह जाकर के एक ऐसे स्थान पर गिरा जिसका नाम था नेमी। उस नेमी में जाकर के चक्र गिर गया और वहां जाकर के वो शीर्ण हो गया। शीर्ण कहते हैं शीर्यतीत शीर्ण, जहां जाकर के कोई चीज गल जाए, जिसकी शक्ति समाप्त हो जाए उसे शीर्ण बोलते हैं। तो इधर था, दो शब्दों को बना करके कहा नेमी और शीर्ण। नेमी और शीर्ण दोनों के संबंध से धर्म चक्र जहां गिरा उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ये पुराणों की अपनी शैली है, दो शब्दों को कैसे जोड़ करके और अर्थ का उपपादन करना, यह पुराण की शैली है। क्योंकि वेदों के अर्थों को ये पूरा करते हैं। वेद में मात्र संक्षेप में, सूत्रात्मक भाषा में आपको जो आख्यान मिलेंगे